शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर रीति से किस प्रकार से बेहद का वैराग्य हो, उसके लिए कौन सी बात बुद्धि में रखनी है। दूसरी बात, बाबा ने कहा हमेशा आप जानते हैं माताएं आती हैं, जीते जी मरने का भोग लगाना है, जीते जी मरना क्या है, भाई भी आते, लेकिन आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से जीते जी मरने का अर्थ क्या है। बाबा ने कहा जीते जी मरने का अर्थ है कि साइलेंस में बैठ जाओ। साइलेंस में बैठ जाएंगे तो बुद्धि चारों तरफ से डिटैच हो जाएगी, इसको बाबा कहते हैं जीते जी मरना। नहीं तो बुद्धि इधर उधर जाती है, तो बाबा ने कहा जीते जी मरना अर्थात साइलेंस में बैठना। बाबा कहते साइलेंस के द्वारा कितनी प्राप्ति होती है, इसके भेंट में बाबा ने कहा कि जैसे वो बताते हैं कि यादवों ने पेट से मुसल निकाले, बाबा कहते पेट से नहीं निकाले हैं लेकिन ये साइंस निकाली है, इस साइंस से ही अपना विनाश करते हैं। फिर बाबा ने माया के बारे में बताया कि माया भी कोई कम नहीं है, बहुत सर्व, जैसे बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी शक्तिशाली है, तो माया से कैसे बचना है वो भी बाबा ने बताया है। फिर कर्म के ऊपर भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2024, मुरली का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे। बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, जब स्मृति में है कि ये सब खत्म होना है और हमारे लिए बाबा नई दुनिया बना रहे हैं, तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। मीठे बच्चे इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है। तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है, इसका उत्तर है, अब जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहां बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते। कैसे हमको साइलेंट रहना है, बाबा सदगुरु के रूप में हमें सिखाते हैं। यहाँ बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंट रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं परंतु उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं। दूसरे सत्संगों में तो आवाज करते, थोड़ा कभी बैठते भी हैं, लेकिन हमें शांति में बैठना है या शांति धाम क्या, वो कोई ज्ञान नहीं है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं परंतु उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। ओम शांति मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण भगवान वाचे कहते ना, तो गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते, कैसे उनको पता, एक लौकिक है और दूसरा परलौकिक पिता को याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और परलौकिक को परम पिता परमात्मा कहा जाता है, लौकिक को परम पिता परमात्मा कह नहीं सकते। तुमको कोई का लौकिक पिता नहीं समझाते। बाबा कहते तुमको ज्ञान देने वाला एक परलौकिक है, तुमको कोई लौकिक पिता ज्ञान नहीं समझाते हैं। परलौकिक बाप परलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जानते हो, तुम जाते हो शांति धाम। बाबा कहते पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं वह वानप्रस्थ भी कहते हो, तीन नाम शांति धाम मुक्ति धाम निर्वाण धाम, और चौथा नाम बाबा ने क्या कहा वानप्रस्थ। वहां पर बिल्कुल एकदम साइलेंट में है ना, जिसको वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है, शांति धाम का टाइटल बाबा दे रहे हैं टावर ऑफ साइलेंस। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उनको शांति धाम का ज्ञान ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना। आज बाबा शांति धाम का पक्का करा, कोई कितना भी साइलेंस में बैठे लेकिन शांति क्या है शांति धाम क्या वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना। बाबा ने राज बताया, कोई शरीर का तो भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए बाबा जो पढ़ाते उसको पहले से अच्छी रीति पढ़ो। तो बाबा कहते हैं कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए बाप जो अब पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं। बाबा बाप के रूप में बच्चों को कितनी संभाल करते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप में साथ ले जाते हैं। तो बाबा कहते एक ही बाप है, एक ही समय तीनों सर्विस करते हैं, ये अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा कहते ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसा और कोई है ही नहीं जो एक ही समय तीनों सर्विस कर सके। ये एक बाप ही साइलेंस भी सिखलाते, तीनों सर्विस भी करते हैं साथ साथ बाबा साइलेंस भी सिखलाते। ये एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता। पुरानी दुनिया से वैराग आ गया, पुरानी बातों से बुद्धि मिट गई, तो बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा जीते जी मरना क्या है साइलेंस, जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं, तब तक वापिस घर कोई जा न सके। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों का पिछाड़ी में सजाएं मिलती है। अब बाबा पहले भी कई बार बता चुके हैं घर जाने के लिए क्या करना है, आत्मा को पवित्र बनना है। अगर नहीं बनते हैं तो फिर क्या होगा, जो भी पाप कर्म की उसकी सजा मिलती है। तो बाबा कहते हैं जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है। अब मानी और मोचरा ये सिंधी शब्द है। मानी है जैसे कोई व्यक्ति आया कुछ मांगता है, खाना मांगता है, पहले उसको डांटा, पहले उसको कुछ दो थप्पड़ लगा दिया, फिर बाद में उसको थोड़ा सा खाना दे दिया, दो चार शब्द उसको कह दिया। तो ऐसे बाबा कहते मानी और मोचरा में पहले जो पाप कर्मों की सजा खाई, सजा खाने के बाद जाके छोटा सा पद मिला, तो इसको कहा जाता है मानी और मोचरा। तो बाबा कहते हैं मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि विकर्म विनाश नहीं किए हैं तो सजा भी खानी पड़ती है, और फिर जाकर के पद छोटा सा मिल जाता है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं, बाप आते ही हैं माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते, गफलत में आ जाते हैं, माया के चक्कर में आ जाते हैं, फिर बाबा को याद नहीं करते, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। भक्ति में तो कहाँ कहाँ माथा टेकते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, शिव बाबा के पास जाते, लेकिन है कौन वो तो नहीं जानते ना। जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। बाप आकर के क्या करते हैं, भटकाने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है, दिन में तो रोशनी है, धक्का नहीं खा सकते ना, तो बाबा कहते रात को ही धक्का खाते, रात में अंधेरा होता है धक्का खाते हैं, रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापुर कलयुग। ये है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन, आधा समय दिन और आधा समय रात बाबा राज बता रहे हैं। सत्युग त्रेता दिन और द्वापुर कलयुग है रात, आधा समय दिन और आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का दिन और रात। ये बेहद की बात है, बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते। अब दूसरी बात बाबा बता रहे, कभी बाबा कहते पुरुषोत्तम संगम युग में आते, तो आज बाबा ने कहा बेहद का बाप कब आते, बेहद के संगम पर आते हैं। इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि, मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं समझते, क्योंकि ये है बीच, क्योंकि बाबा जो है बीच में आते हैं ना, संगम युग पे आते हैं, और कब आते हैं केवल तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले तो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच। वैसे सत्युग त्रेता के भी बीच है, त्रेता और द्वापुर का भी है, बाबा की तो उसमें नहीं आता हूँ, लेकिन जब बेहद का टाइम जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते उसमें बाबा आते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच बाप आते ही हैं, तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा किस समय आते हैं, बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। आज बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही कि पुरुषोत्तम संगम युगे युगे, तो भक्ति में क्या कि उन्होंने युगे युगे शब्द को पकड़ लिया, लेकिन कौन से युगे आते हैं वो नहीं समझते। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युगे युगे, ऐसे नहीं कि युगे युगे। सत्युग त्रेता का संगम उसे भी संगम कह सकते, सत्युग त्रेता का जो बीच का टाइम है बाबा के तो उसको भी संगम युग कह सकते हैं, लेकिन उसमें बाप नहीं आते हैं। सत्युग त्रेता का संगम उसे भी संगम युग कह सकते हैं, बाप कहते ये भी भूल है, बल संगम कहेंगे लेकिन उसमें बाबा तो नहीं आते ना, इसलिए बाबा को कहना पड़ता। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे, इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो किसके लिए, पवित्र होने के लिए। वह ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते, अंतर वो ब्राह्मणों को बुलाते हैं शादी कराएंगे, फिर वो तो हथियाला बंधवाते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम पवित्र बनाते हो और वो काम चिता पर चढ़ाते। वह ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते, उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीत समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उनको समझाया जाता है कि बेहद का बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो उसको पहले बाबा का परिचय दो, उनको याद विनाश। यूं तो उनको समझाया जाता है कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पद पाए। याद से तो वर्षा मिलेगा लेकिन जितना दैवी गुण धारण करेंगे कराएंगे तो बाबा कहते फिर पद भी वैसा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे तो बात है। एक पहले बाबा ने कहा संगम युग, कल युग का अंत, सतयुग का शुरुआत। फिर आज बाबा ने क्या बताया, जब सब पतित बन जाते तब बाप आते हैं। जब बाप आते ही तब यहाँ हैं, जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तब बाप आते हैं। कि बाबा को आना ही है, जब सब पतित बनेंगे पूरे पतित बनेंगे तब बाबा को आना है, तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अलफ समझाते हैं, बाबा ने आकर के परिचय दिया शिव बाबा का। पहले पहले बच्चों को अलफ समझाते हैं, मुझे याद करो। तुम कहते हो वह पति पावन है, ये भी रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं। हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, कोई हे बाबा कहते, लेकिन है कौन बाबा कहते उसका उनको कोई परिचय नहीं है। परंतु परिचय किसी को भी नहीं है। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ता है, परंतु परिचय किसको भी नहीं। अभी तुम संगम वासियों को बाप का परिचय मिला है, वह है नरकवासी, तुम नरकवासी नहीं हो। अंतर, नरक से किनारा कर रहे बाबा कहते तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो फिर एकदम गिर पड़ते हैं कि कराई कमाई चट हो जाती, जितनी कमाई की जितना ऊंचा चले फिर एकदम ऊपर से नीचे गिरते, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं एकदम चोटी तक पहुंचे, वहां गिरे तो वहां से गिरते गिरते लास्ट में आकर एकदम गिर जाते हैं। तो बाबा कहते की कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। ये है ही विशेष दुनिया, वह है वॉइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि इस पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते। जो शुरू में देवताएं आते वो पूरा चक्कर में आते, तो सबसे जास्ती जन्म वही लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है पहले पहले देवताएं ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है, जो पहले पहले सूर्यवंशी, जो बीच में आएंगे सतयुग के बीच में आएंगे या सतयुग के अंत में आएंगे, उनके जन्मों में भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा बता रहे हैं उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वह पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का सत्यों को पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, भल सत्युग त्रेता में पूरा सुख है लेकिन तो भी अंतर है। तो बाबा कहते सत्युग को पूरा सुखधाम कहा जाता है, त्रेता है सेमी, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। फिर बाबा ने उदाहरण दिया चंद्रमा का, जब वो फूल होता है फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती रहती और लास्ट में आकर के पूरा खत्म नहीं होता, एक छोटी सी लाइन बच जाती है। कला कम होने से पूरा रोशनी कम होती जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिर बाकी लकीर जाकर बचती है। जब फुल मून होता है फिर धीरे धीरे कम होता है और लास्ट में जाकर के कैसे होता है, एकदम एक छोटी सी लाइन होती है। तो बाबा कहते आखिर बाकी लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता, बिल्कुल खत्म नहीं होता, लाइन एक न एक रहती है। ऐसे बाबा कहते देवी देवता धर्म की आत्माओं भी जो पवित्रता या गुण है वो नील नहीं होते, बिल्कुल थोड़े से आकर के बचते हैं, नील नहीं होता है। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते। इसको कहा जाता है आटे में नमक। आटे में कितना नमक डालेंगे, इतना सा डालेंगे ना, तो ऐसे थोड़ी सी जो बचती है पवित्रता या गुण वो जैसे कि आटे में नमक। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं, जब बहुत आत्माएं अथवा मनुष्य बहुत मनुष्य हो जाते। अब बाबा के आने का समय जब सारी आत्माएं ऊपर से आ जाती है, बहुत सी आत्माएं आ जाती, बहुत मनुष्य हो जाते, तब बाबा आते हैं। तो बाबा कहते परमात्मा कब आते हैं, जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते। मेला मीन्स हम बच्चों के पास आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है, बाबा कहते ये मेला किस लिए, ये पावन बनाने के लिए, वो तो पतित बनते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है, वह मेले तो मैले होने के लिए। कितनी गंदगी होती है, कितने लोग होते हैं, क्या हालत होती है, तो बाबा कहते हैं उसमें तो गंदे होते जाते, गंदे पानी से स्नान करते हैं। तो बाबा कहते हैं वह मेले तो मैले होने के लिए। इस समय तुम बागवान द्वारा क्या बन रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो, बाबा आकर के फूल बनाते हैं, लेकिन कैसे बनते हो, याद के बल से। कांटे से फूल कैसे बनते हैं, याद के बल से। बाप को कहा ही जाता है सर्वशक्तिवान। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे बाबा बता रहे रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। बाप खुद कहते हैं माया बड़ी बलवान है। बाबा बच्चों को पक्का कराते माया बड़ी बलवान है, ध्यान से रखना, संभल के रहना। बाप खुद कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमको हमारी याद ही बुला देती, माया हमको आपको याद ही नहीं करने देती, ये बच्चे कहते हैं। लेकिन बाबा उनको कहते माया से कैसे बचना है, कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। एक लोग के दुश्मन हुए ना, फिर बाबा कहते जो तुम बाबा को याद करते हो भुला देती, तो माया क्या हुई, तुम्हारी दुश्मन हुई। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर के माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाते हैं ना, अब वो युद्ध नहीं है, युद्ध क्या है, माया और ब्राह्मणों की है। वो देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो ये है, कौन सी, तुम बच्चे बाप को याद करते और माया उस याद को भुला देती है। तो बाबा कहते और कौन सी युद्ध नहीं है, केवल यही युद्ध है, बाप को याद करना और बाप को भूल जाना, कभी भूलते हैं कभी याद करते हैं। युद्ध तो ये है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो, माया याद में विघन डालती हैं, पढ़ाई में विघन नहीं डालते, जब पढ़ रहे हैं, पॉइंट सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उस समय थोड़ा नहीं भूलते, लेकिन जैसे ही साइलेंस में बैठते हैं, बाप को याद करने बैठते, बुद्धि कहाँ कहाँ से चले जाती है। बाबा कहते माया जो विघन कब डालती है, जब बाप को याद करने बैठते हो। तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघन डालती है, पढ़ाई में विघन नहीं डालती, याद में ही विघन पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। माया का काम क्या है? बच्चों की बुद्धि को इधर से उधर घुमाना, और घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं, तो घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देही अभिमानी बनने से क्या होता है? माया का थप्पड़ लग जाता है। अब माया भी इंतजार करती है कब ये देह अभिमानी बने, तो जोर से थप्पड़ लगाती है, फिर हार खा लेते हैं। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। दुनिया में तो कामी के लिए क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बाबा नहीं बोलते हैं। बाबा कहते हैं उनको क्या करना है, प्यार से समझाना है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। ये है रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है कि पावन बनो फिर भी बनते नहीं है। बाबा कहते कितना बाबा को समझाना पड़ता है, समझते भी हैं, सुनते भी हैं, फिर भी प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर दे बैठे। गोरा और सांवरा है ना, देखो बच्चे क्या करते। फिर भी कई बच्चे सच्चाई से बाबा को लिख देते थे, तो बाबा कहते थे कोई बात नहीं, माया ने थप्पड़ लगाया लेकिन अभी फिर से खड़े हो जाओ। कई तो ऐसे जो बिल्कुल बताते नहीं, फिर वो गिरते जाते। इसलिए बाबा कहते ये हार और जीत का खेल है। तो बाबा यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे बेकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। गौर मीन्स आत्मा, अंदर से गोर, ऊपर से भल कितना कोई गोरा हो लेकिन आत्मा के गुण और उसकी अपवित्रता पवित्रता के कारण काले और गोरे होते हैं। विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके नाम, उनके ही नाम का अर्थ समझाते। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, तो बाबा कहते उसका अर्थ क्या है, उनके नाम का, उनके जो भी कर्म नाम लिखे हुए हैं उसका भी अर्थ समझाते हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर वन ये पास होता है। सुंदरता में प्योरिटी, सभी गुणों में नंबर वन पास कौन होता है? ब्रह्मा की आत्मा जो जाकर के श्री कृष्ण बनते हैं। सुंदरता में नंबर वन पास ये होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं। तो नाम रखा है श्याम सुंदर, ये अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर। शिव बाबा को कभी श्याम सुंदर नहीं कह सकते क्योंकि वो तो कभी भी गर्भ में जन्म नहीं लेते, वो तो एक ही बार आते हैं। तो बाबा कहते शिव बाबा है ही एवर सुंदर। वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले और पावन सुंदर होते। काले कौन है? शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से। पतित जो है वो काले हैं और पावन जो है वो सुंदर हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे आप कई कंट्रीज में जाएंगे वहां की जलवायु ऐसी है काले होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे और उनको थोड़ी कहेंगे ये काले, लेकिन आत्मा के ऊपर बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है, सचिव के अंदर नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने, गायन भी है शिव भगवानों वाचे, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता। बाबा क्या करते, माताओं को देखते थे ना, बाबा माताओं के आगे माताओं को सल्यूट मारते थे, बाबा कहते वंदे मातरम, इन माताएं यही माताएं जाकर के स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। इतना उनके अंदर शक्ति भरा, बाबा ने उनको इतना ऊंच बनाया है। तो बाबा ने वंदे मातरम कहा तो विश्व के अंदर भी वंदे मातरम होने लगा। तो बाबा कहते इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है, आप बताओ, वंदे मातरम माताएं भी हैं और ब्रह्मा बाप भी माँ के समान है, बच्चों की पालना करते हैं, तो वंदे मातरम अंडरस्टूड है, पिता भी हैं। तो बाबा कहते हैं तो पिता भी हैं, बाप मातों की महिमा को बढ़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। दुनिया में पहले क्या कहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस, लेकिन भक्ति में क्या कहते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, लक्ष्मी ना, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, सीता फिर राम। तो बाबा कहते हैं कि बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहाँ फिर पहले मिस्टर फिर कहते मिसेस, दुनिया में नाम लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस लिखेंगे, फलाना सच एंड सच लिखेंगे। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, यहाँ पर देवताएं जब बनते हैं तो माताओं की महिमा बढ़ा देते हैं। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है, बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं, एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। अब लौकिक में देखते हैं अपने किसी को, अपना करोड़पति का बच्चा, अपने बाप से बहुत कुछ संपत्ति मिले, फिर भी वो परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगता है। तो बाबा कहते हैं हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे हम और संग तोड़ आपसे ही जोड़ेंगे, भक्ति में कहा लेकिन बाबा के बने, फिर बाबा से अपना साथ जोड़ा, फिर बीच बीच में औरों को याद करने लग जाते। तो बाबा याद करा रहे कि भक्ति में तुमने क्या कहा था। बेहद के बाप को याद करते क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। ये किसने कहा, आत्मा ने कहा ना, आत्मा ने, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कभी कभी साहूकार इतने हैं फिर ऐसे अपने साहूकारी के नशे में ऐसा काम करते हैं जो जाकर के बिल्कुल गरीब बन जाते हैं। कोई गरीब ऐसे जो जाकर साहूकार बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इन्होंने क्या किया ये भी तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण कैसे विश्व के मालिक बने, क्या किया, कैसे पद पाया, बाबा कहते बाबा ने तुम बच्चों को बताया और तुम ही दूसरों को बता सकते हो। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे क्या करना है, उससे वैराग्य। ये तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने मकान से वैराग्य हो जाता। जब कोई नई चीज बनती है बुद्धि में रहता, अभी 2 महीने में बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा, बस अब ये पुराना तो छोड़ना, उनको कितना भी कहो कि पुराना है इसको थोड़ा नहीं नहीं अब तो छोड़ना है, नया तो हमारा तैयार हो रहा है। तो बाबा कहते हैं जब नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है हम उसमें जाएंगे। अब बाबा ने नया मकान कौन सा बना रहे हैं? नई दुनिया का। यहाँ भी बाबा के घर में क्या था? बाबा ने खुद खड़े होकर के ये ट्रेनिंग सेंटर ये सब बाबा ने खुद बनाया। जब बन रहा था तो बाबा बताते थे बच्चों को कि ये नया मकान बन रहा है, तो बच्चे भी कहते बस बाबा ये बनवा रहे हैं हम जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, नए मकान में रहेंगे। जब नए मकान बने, ये हवाई महल बना, तो बाबा को कहा गया कि बाबा आप इधर हो। बाबा ने कहा ये सब कुछ बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं तो पुराने मकान में रहूंगा। बाबा अंत तक पुराने मकान में रहे और नए मकान में बच्चों को रखा। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है हम उसमें जाएंगे। ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा, ये पुरानी दुनिया पुराना मकान टूट फूट जाएगा, ये है बेहज की बात। बच्चे जानते हैं बाबा आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। ये पुरानी छीछी दुनिया, बाबा हमेशा से छीछी है, गंदी है, इससे बुद्धि एकदम हटा देनी चाहिए। तो बाबा कितनी पुरानी छीछी दुनिया है, तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो, वास्तव में तुम्हारा त्रिमूर्ति क्या है? बाबा ने उसमें बहुत कहा था, त्रिमूर्ति का एक बैज बनाया हुआ था, बहुत सुंदर था। और बाबा कहते शिव बाबा भी त्रिमूर्ति है, तो बाबा कहते वास्तव में त्रिमूर्ति जो है ये तुम्हारा कोर्ट ऑफ आर्म है, जैसे ना गवर्नमेंट का बनाते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में ये त्रिमूर्ति कोर्ट ऑफ आर्म्स है, तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है, ये राजाई स्थापन हो रही है। इस कोर्ट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते, त्रिमूर्ति क्या है, त्रिमूर्ति कौन है? बाबा कहते केवल तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए, विनाश तो होगा ही, इसलिए तमो प्रधान बनते हैं तो नेचुरल क्लैमिटीज भी मदद करते हैं। सृष्टि को परिवर्तन करने में नेचुरल क्लैमिटीज और ये एटॉमिक बॉम्ब्स जो है ना मदद करते हैं, तो इसलिए तो नेचुरल क्लैमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मुसल नहीं निकालते हैं, ये साइंस निकली है जिससे सारे कुल का विनाश कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की, सबसे ऊंच शिव बाबा और उसके बाद है देवताएं। तो बाबा कहते जब पूजा करते पहले एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की तो पूजा हो नहीं सकती है, क्यों नहीं होती? ब्राह्मण कभी ऊंच कभी, ब्राह्मण पवित्र आत्माएं तो नहीं है ना, पवित्र बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की पूजा तो हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक हो नहीं सकते। चाहे शरीर भी कितना भी हो लेकिन वो पवित्र नहीं है, आत्मा भी पवित्र बन रही है। तो बाबा कहते ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, महिमा लायक जरूर हो। ब्राह्मणों की महिमा कर सकते हैं लेकिन पूजन लायक नहीं है, महिमा लायक हो। जब फिर देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। अंतर, ब्राह्मण महिमा लायक है, देवताएं पूजने लायक है, ब्राह्मण पूजने लायक नहीं बन सकते क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया हुआ है, माताओं की सेना ने क्या किया? फिर बाबा कहते माताओं की ये सेना क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया, श्रीमत का पालन किया, ज्ञान लिया, फिर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं, माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो, शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई है, कहते ना कुमारियों ने बाण मारे, ये किया, कई कई बातें लिखी हैं, लेकिन बाबा कहते यथार्थ रीति क्या, वो तो बाप बच्चों को बताते हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई हैं, अभी तो तुम सत सत वह बैठकर सुनाते हैं, शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई हैं, वह बैठकर सुनाते हैं, तुम सत सत करते रहते हो। पहले द्वापुर में या कलयुग के अंदर भक्ति में जो भी कहानियां सुनी, सतवचन महाराज सत्य है सत्य करते रहे, तो बाबा कहते तुम सत सत करते रहे हो। तो बाबा बता रहे शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई हैं, वह बैठकर सुनाते हैं, तुम सत सत करते रहते हो, तुम ये बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अब सत्य क्या वो सुनाओ तो वो सत सत कहेंगे, अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम सुनेंगे उसका रहस्य बताएंगे, तुम सच सच नहीं कहेंगे, सच्ची बात कौन सुनाता है, बाबा सुनाते हैं, अभी तुम सच सच नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सच सच कहते रहते, कितना भी समझाओ कि यहाँ ठीक है आपने बहुत अच्छा बनाया, वही तो बात है, वही तो जो सुना है, वही तो हम शास्त्रों में पढ़ते, वो भी सत्य है, जो आप सुना रहे वो सत्य है, कितना भी समझाओ फिर बाबा को कहना पड़ता है बुद्धि कैसी हो गई है। बाबा कहते हैं मनुष्य ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत सत कहते रहते हैं, गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ, नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र, नेपाल में भी जो मंदिर बना हुआ है उसको पशुपतिनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर है, फिर वहां पर जो बताते हो कहते पारसनाथ उसको बहुत मानते हैं, तो पारस और बुद्धि बनाने वाला कौन है, बाबा ही है। तो बाबा कहते नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है, पारसपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है, उनकी डायनेस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते आए हैं। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो अर्थात आस्तिक बनते हो, ऋषि मुनियों ने नेति नेति कहा लेकिन बाबा कहते अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो अर्थात आस्तिक बनते हो, माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है सदा स्मृति में रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, हमारा सबसे ऊंच कुल है, हमें पवित्र बनना और बनाना है, पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरा याद में कभी गफलत नहीं करनी है, देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है, योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भाव, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भाव, साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। बाबा हमेशा कहते मिले तो यूज करो लेकिन उसमें अटैच नहीं हो जाओ, उसके ऊपर निर्भर नहीं हो जाओ। तो बाबा कहते हैं साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो, ये साधन है ही आपके लिए, ये साधन मिले सेवा के लिए, लेकिन साधनों को मर्ज नहीं करो, साधन मिल गए साधना भूल जाए। तो बाबा कहते हैं ये साधन है ही आपके लिए लेकिन साधनों को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो, साधन बुरे नहीं है, साधना तो आपके कर्म का योग का फल, साधन आपके कर्म का और योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए भी उनके प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद का वैराग्य मृत्यु मर्ज न हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो बाबा कहते मर्ज ना हो जाए, उसको बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना। स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। आज का आवेक्त इशारा, आज है 8 तारीख। मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। मन में कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा, संस्कारों के टक्कर से बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को मालूम है कि नीचे शांति वन में वार्षिक सेवाओं की बहुत सुंदर मीटिंग चल रही है। देश विदेश के तो कम है, भारत के विभिन्न स्थानों से सीनियर बहने, जोन इंचार्जी, सब जोन इंचार्जी, सेवा के फील्ड में सभी जो विशेष आगे हैं उनको मीटिंग चल रही है। इस वर्ष की थीम क्या होगी वो भी आप सबको बाद में सुनाई जाएगी। साथ साथ ज्ञान योग से संबंधित भी बातें चलते, बीच में जैसे सच्चाई सफाई की बात आए, हमारी दादी जानकी हमेशा कहती थी सच्चाई भी हो, सफाई भी हो, सादगी भी हो, तो वो सब बातें भी सब ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी हैं, तो वो भी हम सब दादियों से सुनते हैं और सबको ध्यान खिंचवाया जाता है। और दूसरी बात, एक अनाउंसमेंट है, सेवाधारी भाई बहने जो यहाँ बैठे हाथ खड़ा करें, सेवाधारी बाबा के बहुत ही लाडले बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बाबा आपकी बहुत खातरी करते हैं। लेकिन सेवाधारी भाई बहनों को 2-3 दिन से पहले भी बताया गया, फिर से बता रहे हैं कि सेवाधारी कुछ कारोबार के कारण सेवाधारी भाई बहनों का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में, वहां पर आराम से बैठो, खुले से बैठो, नीचे तो जगह भी कम है। इसलिए फिर से बता रहे हैं कि सेवाधारी भाई बहनों का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में, वहां पर ही जाना है, नीचे स्थान कम है तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। इसके लिए सभी सेवाधारी भाई बहनों को जैसे हर कार्य में सहयोग देते हैं, इस कार्य में भी उनको विशेष सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।